الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اللہ تعالیٰ سے بات کی سمجھ کی توفیق اور عمل کی توفیق مانگتے ہوئے ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بیچ میں ہماری کچھ چھٹیاں پڑی ہیں تو ذرا لمبا گیپ ہو گیا ہے. تو پچھلی کلاسوں میں ہم نے سورہ مزمل جو شروع کر چکے تھے تو اس کی ابتدائی 7 آیات کی تفسیر ہم نے پڑھ لی تھی. 8ویں آیت جو ابھی تلاوت کی گئی ہے اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہم نے شروع کر دی تھی. سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوبانہ خطاب فرمایا، ایہا المزمل، اے اپنے آپ پر کپڑے لپیٹ لینے والے. اور اس کے بعد پھر ایک بہت بھاری حکم اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ اکثر رات کو کھڑے رہا کریں نماز میں، اور اس میں قرآن کی تلاوت کیا کریں ترتیل کے ساتھ. اور ہم آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں. تو وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور تبتل الیہی، اور اس کی طرف تبتل اختیار کیجئے، یعنی ہر چیز کو چھوڑ کر کے اس کی طرف چلے آئیے. تبتیلن، تبتیلن تبتل ہی کا اسم مصدر ہے، اور یہ ایمفیسس کے لیے جیسے استعمال کیا جاتا ہے. مفعول مطلق، جو گرامر پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. تو اس کی تفسیر میں حضرت نے جو پیج نمبر 593 سے شروع کری تھی تو اس میں تبتل کے معنی بیان کیے تھے کہ مخلوق سے منقطع ہو کر خالق کی عبادت میں لگ جانا، یہ ہے تبتل کا مطلب. اور اس کا نبی علیہ السلام السلام کو حکم کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد، یعنی اسی آیت کے اندر دوسرا حکم کیا ہے کہ وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر، ٹھیک ہے. یعنی ایکچولی دوسرا حصہ نہیں بلکہ پہلا حصہ اس کا کیا تھا کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کر. تو اس میں تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر جس ذکر کا حکم کیا جا رہا ہے نا، تو یہ ذکر جو ہے وہ یعنی ہر وقت اور حال اور ہر حال میں جاری رہنا چاہیے. تو ایسا جو ذکر ہے وہ ذکر یعنی ذکر لسانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذکر لسانی جو زبان سے کیا جاتا ہے وہ آپ ہر حال میں کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے. کیونکہ زبان سے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، بات چیت کرنی ضروری ہوتی ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اپنی زبان کو کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ذکر کرنا زبان سے منع ہے. تو اس وجہ سے اس ذکر کا مطلب جو ہے وہ ذکر قلبی یا فکر اور تدبر مراد ہے، یعنی جو دل سے جاری ہو یا انسان کے ذہن میں جو اللہ تعالیٰ کے ہر وقت دھیان رہے نا، تو یہ دراصل ایکچولی یہاں پر مراد ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ تھوڑی سی سمری ہو گئی. اچھا، اب یہاں پر ایک انہوں نے مزید کلیئرفیکیشن یہ کری تھی کہ یہ جو ہر وقت ذکر کرنے کا حکم ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں ہے، تو اس سے رہبانیت مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی دنیا کے معاملات کو ترک کر کے کہیں کونے میں بیٹھ جانا، یا غار میں چلے جانا، جنگل میں نکل جانا، صحرا میں پھرتے رہنا، یہ بالکل بھی مراد نہیں ہے، صحیح ہے. یہ ہمارے دین کی ایک خاصیت ہے. پچھلے ادیان کے اندر کچھ لوگوں نے جو رہبانیت شروع کری تھی تو وہ بھی، ان کو بھی حکم نہیں تھا رہبانیت کا، انہوں نے بطور بدعت کے یعنی دین میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کیا تھا رہبانیت کا، ये शादी नहीं करेंगे और दुनियावी मामलात नहीं करेंगे और बस अलग बैठे हुए जो है वो जिक्र करते रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल भी हमारे दीन के अंदर यानी सनाहतन इसका इनकार किया गया है। अब इसके आगे फ़ायदा है मुहिम्मा। मुहिम्मा कहते हैं एक अहम चीज़ को, तो एक अहम फ़ायदा या एक अहम पॉइंट जिसको कहते हैं ना हम पॉइंट टू नोट या इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस तरह अंग्रेजी में लिखते हैं उसी तरह से उर्दू में फ़ायदा है मुहिम्मा लिखेंगे। फ़ायदा मुहिम्मा बयान करते हैं कि जिक्रुल्लाह की कसरत और ताल्लुकात दुनिया के तर्क के मामले में सूफियाए कराम सलफन व खल्फन सबसे आगे रहे हैं। यानी उम्मत के अंदर जो सूफियाए कराम गुजरे हैं, ठीक है, सूफियाए कराम ये सूफी की जमा है, ठीक है। सूफी किस शख्स को कहा जाता है? सूफी का जो लफ्ज़ है ये इसकी बड़ी तहकीकात किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। एक इसकी तहकीक ये भी है कि सूफ से ये लफ्ज़ निकला है, सूफी। सूफ जो है ना एक ख़ास किस्म के ऊनी लिबास को कहते हैं, ठीक है। तो जो लोग उस किस्म का ऊनी लिबास पहना करते थे ना तो उनको सूफी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है लफ्ज़ सूफी की, ये एक्सप्लेनेशन जो है ना ये यानी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि सूफ का लिबास पहनने वालों को तो सूफी कहना शुरू कर दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को भी सूफी कहा जाता है वो सारे के सारे सूफ का लिबास पहनते हो, ऐसा नहीं है। तो गोया मतलब इसका ये हुआ कि ये टर्म शुरू हो गई सूफ का लिबास पहनने वालों की वजह से, ये टर्म शुरू हो गई, लेकिन इस टर्म का इतलाक सिर्फ सूफ का लिबास पहनने वालों पर नहीं किया जाता बल्कि हर उस शख्स के ऊपर किया जाता है जो कि दीन के एक शोबे जिसको तसव्वुफ कहा जाता है उस तसव्वुफ के शोबे में आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना उसको सूफी कहा जाता है। तो ये जो वर्ड है तसव्वुफ, ये तसव्वुफ जो है ये भी बाद का वर्ड, यानी ये भी बाद में इजाद हुआ ये वर्ड, ठीक है, तसव्वुफ का वर्ड। ये तसव्वुफ का जो वर्ड है ये कुरान में और हदीस में कहीं भी नहीं है, सही है। तो ये उन उन नई टर्म्स में से हैं जो कि अरबी जुबान के अंदर बाद में इजाद हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो इजाद का जो कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ ना कि ये इजाद हुई है, इस वाली इजाद को आप बिदत नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि तसव्वुफ का जो वर्ड है ये दीन के अंदर एक इजाफा नहीं है। अगर दीन के अंदर एक इजाफा किया जाए ना तो फिर उसको कहेंगे कि भाई ये तो एक नई इजाद है और ये एक बिदत है। नहीं, ये ऐसा ऐसा वाला मसला यहाँ पर नहीं है। बस जो है ना कि होता है ना कि इंसानों की एक खास कैफियत होती है या एक खास मेहनत और जद्दोजहद होती है तो शुरू में उसका कोई खास नाम नहीं होता, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना फिर किसी भी वजह से उसका एक नाम रख देते हैं, ठीक है, नाम रख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे आप कहें कि भाई पुराने जमाने में ना लोग जो खेल खेला करते थे आपस में, तो जैसे तस्वर करें कि कुछ लोगों ने ऐसा खेल खेलना शुरू किया कि एक गेंद टाइप की कोई चीज बनाई, ठीक है, और हाथ में उन्होंने एक डंडा टाइप की कोई चीज पकड़ी, डंडा, ठीक है, और उस गेंद को जो है ना उस डंडे से मारना शुरू कर दिया, सही है। अब ये यानी कुछ लोगों ने यानी इस तरह से किया कि जैसे कि कई लोगों ने डंडे पकड़े, ठीक है, और एक गेंद जो है ना वो जमीन पे रखी और उस गेंद को जो है वो मारना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है। अब इस तरीके से उन्होंने खेल खेलना शुरू कर दिया आपस में कि भाई हाँ वो गेंद को जो है वो मार करके जरा घुमा घुमा करके कहीं एक तरफ लेके जाते थे, फिर दूसरे लोग जो है वो उसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो डंडा और गेंद ये जो है ना वो एक खेल की शक्ल बन गई, लेकिन इस खेल का कोई नाम नहीं होता था, राइट। लोगों ने कोई यानी नाम पहले नहीं रखे जाते, पहले जो है ना वो काम शुरू हो जाता है। जब ये काम थोड़ा सा और आगे बढ़ा, यानी ये खेल वाली शक्ल जो थी ना डंडे और गेंद वाली शक्ल जब और आगे बढ़ी ना तो बाद में जाकर के लोगों ने इसको नाम देना शुरू कर दिया। वो नाम क्या था, मिसाल दे रहा हूं मैं खाली समझने की खातिर, वो नाम था हॉकी। आपने हॉकी का नाम सुना है, हॉकी एक गेम होता है, सही है, जिस तरह क्रिकेट एक गेम होता है ना उसी तरह एक हॉकी गेम भी होता है। तो ये हॉकी का जो लफ्ज है ना ये लफ्ज तो बाद की इजाद है, लेकिन अमल जो है ये तो पहले से चला आ रहा था ना, पहले से लोगों ने इस तरह से खेल खेलना शुरू कर दिया, बाद में जो है वो नाम पड़ गया उसका। बिल्कुल इसी तरीके से तसव्वुफ भी ऐसी चीज है, ये चीज कोई नई इजाद नहीं थी दीन के अंदर, काम तो ये पहले से चल रहा था, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से ये वाला काम चल रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो टर्म तसव्वुफ है ना, ये टर्म बाद में लोगों ने इसको पुकारना शुरू कर दिया, ठीक है। तो टर्म्स की इजाद जो होती है, इस इजाद को आप बिदअत नहीं कह सकते कि ये दीन के अंदर एक इजाफा नहीं है, क्योंकि काम तो पहले से चल रहा था, कोई नया काम की थोड़ी शुरू किया गया है, ये तो सिर्फ एक नाम नया दिया गया है ना। तो नाम नया दिया जाना जो है ना, ये बिदत नहीं कहलाता है, ओके। तो सूफिया कराम जो है वो करते क्या है, उनका काम ये होता है कि दीन के मुख्तलिफ जो शोबे हैं ना, उन शोबों में से जो तज़किया नफ्स का शोबा है, उस तज़किया नफ्स के शोबे के ऊपर ये यानी ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है, दूसरों दूसरों के मुकाबले में। उलमाए कराम वो क्या करते हैं, उनको उलमाए कराम क्यों कहा जाता है, इसलिए कि दीन के जो जाहिरी उलूम होते हैं उन उलूम की हिफाजत का काम जो है वो उलमाए कराम करते हैं, सही है, तो उनको जो है वो उलमा कहा जाता है। उसी तरीके से जो दीन के अंदर दूसरे लोगों को बुलाने का काम करते हैं, दावत देने का काम करते हैं, तो उनको जो है वो यानी तबलीग वाले कहना शुरू कर दिया लोगों ने, तबलीगी, ठीक है। तो तबलीगी भी एक बात की टर्म है, ये शुरू की टर्म तो नहीं है ना, ये बात की टर्म है। तो ये सारे शोबे हैं दीन के अंदर, सारे के सारे इंतहाई अहम शोबे हैं, एक शोबे के बगैर बाकी शोबे जो है ना वो यानी नकारा हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो सारे शोबे अहम हैं, लेकिन इन शोबों के नाम जो हैं वो बाद में आकर के पड़े। तो उसी तरीके से सूफियाए कराम जो हैं वो लोग होते हैं जो कि तसव्वुफ के शोबे को लेकर के आगे चलते हैं और उम्मत में जो है वो तसव्वुफ को सिखाते हैं। और तसव्वुफ का मकसद क्या होता है, तज़किया नफ्स और दिल का तस्फिया, तस्फिया कल्ब और तज़किया नफ्स, ठीक है। तो ये जो तस्फिया कल्ब और तज़किया नफ्स करने वाले जो लोग थे, जिनको कि सूफियाए कराम बाद में लोगों ने कहना शुरू किया, तो सल्फन और खल्फन, सल्फन का मतलब होता है कि बिल्कुल इब्तिदा की जो जनरेशन हैं सहाबा कराम की, फिर ताबईन की और तबा ताबईन की, ये तीन जो जनरेशन है ना इनको सलफ कहा जाता है, और इन तीन के बाद जो जनरेशन हैं उनको खलफ कहा जाता है। खलफ का मतलब होता है बाद में आने वाले, ठीक है। सलफ का मतलब होता है पिछले गुजर जाने वाले, पहले गुजर जाने वाले, और खलफ बाद में आने वाले, ठीक है। तो सल्फन यानी जो बिल्कुल शुरू की जनरेशन थी, उनमें भी जो सूफियाए कराम थे उन्होंने अल्लाह की जिक्र की कसरत और ताल्लुकात दुनिया के तर्क में वो सबसे आगे रहे हैं, और खल्फन भी जो सूफिया कराम आए हैं उम्मत के अंदर, उन्होंने भी ना सबसे ज्यादा जो है वो ये वाला काम किया है। क्या मतलब इसका, मतलब इसका यह है कि जो दूसरे लोग थे ना उलमाए कराम, राइट, या तबलीगी जमात वाले वाले लोग या जिहाद करने वाले लोग, ये लोग भी अल्लाह का जिक्र करते थे, ये लोग भी दुनिया को तर्क करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिन लोगों ने ये काम किया वो सूफिया कराम, ये इस जुमले का मतलब है, ठीक है। तो इन सूफिया कराम के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने फरमाया कि हम जिस मुसाफत को तय करने और रास्ता कता करने में दिन रात लगे हुए हैं, दर हकीकत उसके दो कदम है, ठीक है, दर हकीकत उसके दो कदम है। यानी ये जो है ना अल्लाह तक पहुंचना, ये अल्लाह तक पहुंचना हमारे दीन में ना इसके लिए रास्ते का नाम है कि भाई आप रास्ता तय करते हैं। जैसे कि सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल, सूरह फातिहा तो बिल्कुल कुरान की इब्तिदा है ना, तो वहीं पर अल्लाह ताला ने सिरात का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। सिरात, सिरात भी किसको कहते हैं, रास्ते को कहते हैं, ठीक है। तो गोया कि बंदा जो है ना वो जब दुनिया में आता है तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा होता है, ठीक है, और उसकी जो डेस्टिनेशन है, जो उसका मंजिल है, वो मंजिल जो है वो उसके परवरदिगार की रजा है, परवरदिगार की रजा हासिल करना, ये टारगेट है, ये मंजिल है, ठीक है। तो ये शख्स जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चलता है और ये अपने परवरदिगार की रजा तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसके अंदर वो जितनी मेहनतें कर रहा होता है और इबादतें कर रहा होता है या अमाल कर जो भी कर रहा होता है ना, इसको एक रास्ता उबूर करने से ताबीर किया, कि गोया कि वो एक रास्ता उबूर कर रहा है, सही है। जैसे कि आप अगर रियाज शहर से सफर शुरू करें कि भाई मुझे मक्का मुकरमा जाना है, तो मक्का मुकरमा मुझे क्यों जाना है, क्योंकि मैं वहां पर अल्लाह ताला का घर है, और अल्लाह ताला के घर पहुंच करके ना, जब मैं अल्लाह ताला के घर का के ऊपर एक जगह है जिसको के यानी हजर अस्वद जैसे कहते हैं, ठीक है, तो हजर अस्वद से जाकर के जब मैं लिपट जाऊंगी ना, या मुलतजम, मुलतजम से जब मैं जाकर लिपट जाऊंगी ना, तो ऐसा है गोया कि मैं अपने रब से जाके लिपट गई। हालांकि वो रब नहीं है, वो तो मुलतजम है, ठीक है, वो तो एक इमारत का हिस्सा है, लेकिन उससे जाकर के जब मैं लिपट जाऊंगी तो गोया कि मैं अपने मकसूद तक पहुंच गई। लेकिन उस मकसूद तक पहुंचने के लिए मुझे एक लंबा सफर तय करना है। रियाज से मुझे गाड़ी में बैठना पड़ेगा, गाड़ी को मुझे हाईवे के ऊपर उतारना पड़ेगा, और हाईवे के ऊपर उसको चला करके मुझे तकरीबन 900 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के मैं काबतुल्ला तक पहुंचूंगी, ठीक है। तो ये है सफर का कॉन्सेप्ट, सफर तय करने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये जो सफर है, इसमें सूरह फातिहा के अंदर हमें दो लफ्ज बताए गए इस सफर के लिए ना, एक है सिरात का लफ्ज, जिससे कि पता चलता है कि ये एक रास्ता है, और मुस्तकीम, मुस्तकीम का मतलब कि ये रास्ता भी जो आपने तय करना है ना, ये बिल्कुल सीधा आपने तय करना है। ऐसा नहीं है कि आप मक्का मुकरमा वाली हाईवे के ऊपर गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते जो है ना, एकदम आपने एक मखरज ले लिया, एग्जिट ले लिया, और एग्जिट लेकर के जो है वो आप किसी दूसरे शहर की तरफ चलना शुरू हो गए, राइट। तो किसी दूसरे शहर की तरफ आप चलना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप मक्का मुकरमा तो नहीं पहुंच सकेंगे। मक्का मुकरमा पहुंचने के लिए तो जरूरी है कि आप मक्का हाईवे के ऊपर ही चलते रहे, ठीक है। तो सिरात खाली काफी नहीं है कि भाई मैं कोई भी रास्ता इख्तियार करूं मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी, नहीं, बल्कि सिरातुल मुस्तकीम जो सही रास्ता है, उसी रास्ते को मुस्तकिलन आपको इख्तियार करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आप उस रास्ते को छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ दिया तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो हमारा दीन जो है ना, फिर वो ये रास्ते वाला कॉन्सेप्ट देता है हमें। इसी वजह से इस रास्ते को उबूर करने वाला जो शख्स होता है ना, जो कोशिश करता है कि मैं इस रास्ते को तय करूं, उसको सालिक भी कहा गया, सालिक, ठीक है। सालिक का भी मतलब होता है रास्ता तय करने वाला, सफर करने वाला, ठीक है। और इस रास्ते के लिए सिरात के साथ साथ एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, सुलूक। सुलूक भी जो है ना, वो भी रास्ते को ही कहते हैं, ओके। जिस तरह सिरात रास्ते को कहते हैं, उसी तरह सुलूक भी रास्ते को कहते हैं, ओके। तो मशाइख ने एक बड़ी यानी ये बात कही कि भाई ये जो रास्ता है ना, परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता, ये रास्ता यानी इस रास्ते के ऊपर दो माइल स्टोन हैं, दो मंजिलें हैं। अगर आप वो दो मंजिलें तय कर लें तो आप अपने परवरदिगार तक पहुंच सकते हैं। इसी को मंजिल का भी आप नाम दे सकते हैं, इसी को आप दो कदम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या फरमाया कि पहला कदम मखलूक से इनकिता है, मखलूक से कटना, ये पहला कदम है, और दूसरा कदम वसूल इलल्लाह है। वसूल इलल्लाह का मतलब क्या कि अल्लाह से जुड़ जाना, अल्लाह तक पहुंच जाना। क्या मतलब कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर एक्चुअली इस रास्ते के ऊपर दो कदम का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहला कदम उठाएंगे, फिर दूसरा कदम उठाएंगे, फिर उसके बाद तीसरा कदम उठा करके मंजिल पे पहुंचेंगे, नहीं, बल्कि ये रास्ता सिर्फ दो कदम है। यानी एक कदम आपने उठाया, दूसरा कदम मंजिल है, तीसरा कदम मंजिल नहीं है, दूसरा कदम मंजिल है। बात समझ में आ रही है? कुछ किसी को कोई सवाल है, कोई भी बात क्लियर नहीं हो रही हो तो बिला तकल्लुफ पूछ लीजिए, बल्कि वॉइस पर भी पूछ सकती हैं, मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, ठीक है, पूछ एनीवे बोल करके भी पूछा जा सकता है सवाल। तो ये जो सफर है, इसके ऊपर सिर्फ दो मंजिलें हैं। एक जो है वो समझ, जिस तरह हम होता है ना कि आप इंडिया का सफर करती हैं, जो इंडियंस हैं, या जो पाकिस्तानी और पाकिस्तान का सफर करते हैं, तो आपको हमेशा डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं मिलती ना, कि रियाज से जो है वो प्लेन ने टेक ऑफ किया और लाहौर जा करके लैंड कर दिया, या कराची जाके लैंड कर लिया, ऐसा तो नहीं होता ना हमेशा, बल्कि आपको एक इनडायरेक्ट फ्लाइट मिलती है। वो इनडायरेक्ट फ्लाइट होती है जैसे गल्फ एयरवेज की फ्लाइट है। गल्फ एयरवेज की जो फ्लाइट मिलेगी ना, वो रियाज से टेक ऑफ करेगी, वो बहरेन लैंड करेगी पहले, और फिर बहरेन से टेक ऑफ करेगी, फिर कराची लैंड करेगी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिट। बहरेन जो है ना, ये ट्रांजिट है। ओके, ट्रांजिट पे जब आप पहुंच गए तो अब आपका अगला कदम किधर जाएगा, अपने मुल्क में उतरेगा, ठीक है। तो अगला कदम आपका मंजिल पर ही उतरेगा, लेकिन ट्रांजिट पे पहुंचना जरूरी है, ट्रांजिट के बगैर आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है। बिल्कुल यही मामला है, दो कदम का मतलब ये है असल में, ठीक है। तो ये दो कदम में से पहला कदम क्या है, इनकिता अनिल मखलूक, मखलूक से कटना, ये है पहला कदम। अगर कोई शख्स पहला कदम कर लेता है, अब दूसरा कदम ये कर ही लेगा, यानी दूसरे कदम तक तो ये पहुंच, यानी दूसरा कदम इसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि मैं ये पहला कदम ना करूं और डायरेक्ट मंजिल तक पहुंच जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। यानी आप गल्फ एयर्स की फ्लाइट लेकर के बगैर ट्रांजिट के कराची पहुंच जाएं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि गल्फ एयर वालों ने सिस्टम ये बनाया हुआ है कि जी आपको पहले बहरेन आना पड़ेगा, जब तक आप बहरेन नहीं आएंगे हम आपको कराची वाली फ्लाइट पर नहीं बिठाएंगे। बिल्कुल यही मामला अल्लाह ताला ने भी किया हुआ है। जब तक तुम इनकता अनिल मखलूक नहीं करोगे, मैं तुम्हें वसूल इलाल्ला वाली फ्लाइट पर नहीं बैठने दूंगा। बात समझ में आ रही है? अब इसका मतलब क्या है, इसी बात को अगर आप उन वाले अल्फाज में बयान करें जिनको कि हम पिछले दिनों आपको जरा समझाते रहे, तो वो क्या अल्फाज होंगे, वो क्या टर्म होगी, जरा कोई आप में से अगर बता दे। पिछले दिनों हमने आपके सामने एक मौजू पे काफी बात करी है, वो क्या मौजू था जो इसका ताल्लुक इस कॉन्सेप्ट के साथ है कि जब तक वो नहीं करेंगे उस वक्त तक दीन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या था वो? नाजिंस की सोहबत से परहेज। ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। नाजिंस को जब तक नहीं छोड़ेंगे, नाजिंस की सोहबत, नाजिंस की मोहब्बत, नाजिंस की दोस्ती, राइट, जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे, इससे इनकता नहीं करेंगे, दीन में आगे नहीं बढ़ सकते, राइट, वसूल इलाल्लाह को नहीं हासिल कर सकते। भूल जाएं इस कॉन्सेप्ट को, जो हमने दोस्तियां लगा के रखी हुई होती है ना, कॉलेज की दोस्तियां, कजन्स की दोस्तियां, मोहल्लेदारों की दोस्तियां, रिश्तेदारों की दोस्तियां, राइट, तो जो दो ये जो दोस्तियां होती है ना, कभी उधर से फोन आ रहा है, कभी उधर से मैसेज आ रहा है, कभी उसके साथ जो है वो बातें कर रही हैं, कभी उसके साथ बातें कर रही हैं, कभी उसके साथ जो है वो दिल का हाल शेयर कर रही हैं, कभी उसके साथ दिल का हाल शेयर कर रही हैं, राइट, ऐसे लोग दीन में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ये लोग ये वसूल अल्लाह नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। सारा सारी जिंदगी ये रोते ही रहेंगे कि हाय मैं तो कुछ ना कर सकी, मैं तो कुछ ना कर सकी, मैं तो ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि इनकी जिंदगी तो थोड़े दिनों में गुजर जाएगी, फिर इनकी जो अगली नस्ल आएगी ना, वो अगली नस्ल भी इन्हीं की जैसी होगी, राइट, वो भी दीन के अंदर आगे नहीं बढ़ सकेगी, इसलिए कि उस नस्ल की जो जहन साजी करनी थी, जो दिल साजी करनी थी, वो तो इन्होंने खुद करनी थी, ठीक है, वो तो माँ बाप ने करनी होती है ना। तो माँ बाप जो है वो अगर खुद ही जो है वो मखलूक का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, अपने दोस्तियों से जो है वो तौबा करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो अपने औलाद की क्या तरबियत करेंगे, औलाद की क्या क्या दिल साजी करेंगे, क्या जहन साजी करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से फिर अब ये खाली ये नहीं है कि सिर्फ हमारी जिंदगी खराब होगी, बल्कि हमारी औलाद की भी जिंदगी खराब होगी, ठीक है। तो ये नाजिंस की जो सोहबत है ना, ये हमने अपनी खातिर और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी में दिया है उनकी खातिर हमें इस नाजिंस की सोहबत से तौबा करनी पड़ेगी। और कैसे करनी होगी है, कैसे करनी होती है, ये तरीका जो है वो अपने मशायख से सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस तौबा करने का मतलब ये नहीं होता कि उनके जिस तरह वो क्या बच्चे जिस तरह से कैसे करते हैं, जिनसे उनकी लड़ाई हो जाती है तो वो क्या करते हैं, कुट्टी कर लेते हैं, है ना। कुट्टी करने का तरीका हमारे बचपन में तो यही होता था कि जो छोटी उंगली होती थी ना, वो छोटी उंगली जो है वो उनकी छोटी उंगली से जो है वो एक सॉर्ट ऑफ शेक कर लेते थे, मुसाफिया करते थे, छोटी उंगलियों का मुसाफिया, ठीक है। तो उसको कहते हैं जी कुट्टी कर ली है, ठीक है। तो अब बड़े होने के बाद क्या, अब बड़े होने के बाद ये आपने नाजिन से कुट्टी करनी होती है कि इस तरह से उंगली बढ़ाएंगे, वो भी अपनी उंगली बढ़ाएंगी और आप जो है कुट्टी कर लेंगे, ये तरीका होगा? नहीं, ये तरीका नहीं होगा ना। क्यों क्यों भाई, बचपन में तो ये तरीका था, अब क्यों नहीं ये तरीका है भाई? इसलिए कि अब जो है वो हम बड़े हो गए, अब जो है ना वो कुट्टी करने का तरीका डिफरेंट हो चुका है। तो ये कुट्टी करने का तरीका अब क्या हो चुका है, 30 साल की उम्र में क्या हो चुका है, 40 साल की जब कोई हो चुकी होती है उनको कैसे कुट्टी करनी होती है, ये तरीका जो है ना ये सीखना पड़ता है। जब छोटे से थे तो उस वक्त भी तो कुट्टी करने का तरीका सीखा था ना किसी से, राइट? आपसे 2-3 साल बड़ी जो जो होती थी वो आपको सिखाती थी कि ऐसे कुट्टी करनी होती है, राइट? आपने कोई ख्वाब तो नहीं देखा था कि कुट्टी कैसे करनी है, ख्वाब में देखा था कुट्टी कैसे करनी है? या फिर जो है वो अल्लाह ताला ने कोई आवाज दे के आपको बताया था कि कुट्टी ऐसे करी जाती है? कुछ नहीं था ना, बड़े से सीखा था ना, बचपन में कुट्टी करने का तरीका बड़े से सीखा था ना। बिल्कुल इसी तरीके से जब बड़े हो जाते हैं ना तो उस वक्त भी कुट्टी करने का तरीका बड़ों से सीखना होता है कि भाई कैसे पीछा छुड़ाएं, राइट? ये तरीके सीखने के होते हैं, ये बगैर सीखे तरीके नहीं आ जाते हैं, तो सीखना पड़ता है ना इन चीजों को। तो जब सीख करके कोई काम करते हैं ना तो वो काम जो होता है वो आसान हो जाता है और खामखा की एक मुसीबत और फसाद और फितने का सबब नहीं बनता है। तो नाजिंस की सोहबत को छोड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? वो शैतान बहुत मुश्किल बना करके पेश करता है कि कैसे होगा, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम तो तबाह हो जाओगी, तुम तो जो है वो कहीं की नहीं रहोगी, और तुम्हें लोग जो है वो ताने देंगे, और तुम्हें जो है वो बातें सुनाएंगे, और खानदान वाले भी बात करेंगे, और तुम्हारी जो है वो दोस्तियां भी बात दोस्तें जो है वो भी बात किया करेंगे, ये करेंगी वो करेंगी, ठीक है? और बस हम उसी खौफ की वजह से जो है ना वो हम ये कर ही नहीं पाते, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाते। तो भाई हमें पूछना चाहिए कि भाई कैसे छोड़ें उनकी सोहबत को, क्या तरीका इख्तियार करें कि जिसको कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है? सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे का मतलब क्या कि आपके दोस्त जो है वो आपके लिए सांप, ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सोचें कि ये जो नाजिंस की सोहबत है ना ये सांप की मानिंद है, ये मुझे डसेगी और मैं जहन्नुम के मुंह में पहुंच जाऊंगी, मैं जन्नत में नहीं पहुंच सकूंगी। तो ये जो दोस्ती लगाई हुई है ना मैंने, ये दोस्त ये वो अफराद सांप नहीं है बल्कि ये दोस्ती जो है ना ये सांप है। तो इस सांप को मैंने मारना है और ऐसे मारना है कि मेरी लाठी भी ना टूटे, यानी कोई फितना फसाद और हंगामा भी ना खड़ा हो जाए, ठीक है? तो ये गुर होता है, इस गुर को सीखना पड़ता है, ठीक है? तो ये कहलाता है मखलूक से इनकता। मखलूक से इनकता जब तक नहीं करेंगे तो उस वक्त तक वुसूल इलल्लाह हरगिज हरगिज हासिल नहीं हो सकती। इसी बात को हमारे मशाइख ने एक दूसरे अल्फाज में कहा जो कि हमारे हजरत बयान में फरमाते हैं कि किसी बहुत बड़े बुजुर्ग गालिबन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह या उनकी तरह के कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह सिर्फ 2 कदम है, अल्लाह 2 कदम है। कैसे भाई? पहला कदम अपने नफ्स पर रख लो, पहला कदम अपने नफ्स पर रख लो, दूसरा कदम अल्लाह ताला तक पहुंच जाएगा, ठीक है? तो नफ्स पर कदम रखना ये यही बात है मखलूक से इनकता, क्योंकि मखलूक से जो ताल्लुक जोड़ने की जो हमारे अंदर ख्वाहिश होती है ना, टू बी वेरी सोशेबल सोशलेबल वेरी एक्सेप्टेबल, राइट? हमारे जरा वाहवा होनी चाहिए, हमारे हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होना चाहिए, राइट? और हम जो है बहुत एक्सेप्टेबल होना चाहिए मुआशरे के अंदर। ये कहाँ से आई है ये ख्वाहिश, कहाँ जन्म लेती है? ये ख्वाहिश इंसान के नफ्स में जन्म लेती है, राइट? ये सारी नफसानी ख्वाहिशात होती हैं। तो नफ्स के ऊपर जब इंसान कदम रखता है ना, यानी उसको दबाता है, तो इस दबाने का मतलब है कि जब नफ्स दब जाएगा तब जो है वो मखलूक से इनकता करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मखलूक से ताल्लुक जोड़ने के ऊपर हमारा नफ्स हमें भड़का रहा होता है, वही हमें उभार रहा होता है कि दोस्तियां बना करके रखो। ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने इतने प्रोफेशनल, इतने इतने बड़े हो गए, दीन में भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन रोजाना उन्होंने अपने दोस्तों के साथ फोन पे बात करनी होती है, यानी हमें हैरानगी होती है, हमारी तो महीनों गुजर जाए किसी जानने वाले के साथ फोन पे बात ना हो, उनकी जो है वो रोजाना फोन पे बात होनी जरूरी होती है, वो हमेशा अपडेटेड रहते हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है? और इसलिए नहीं कि उनके दुख दर्द में शरीक हो सकें, उनकी मुश्किल को सॉल्व कर सकें, नहीं, ये मजबूरियां, ये आदतें लगी हुई होती हैं सर, ठीक है ना? वो आदतन ये काम कर रहे होते हैं, कोई नेकी की नीयत से अल्लाह की रजा के खातिर ये काम नहीं कर रहे होते हैं, आदतन ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये जो आदतें लगी हुई होती हैं ना, ये आदतें इंसान को दीन में आगे नहीं बढ़ने देती हैं, ठीक है? कोई कौन सा कोई इश्काल इस बात पर तो जरूर पूछिएगा। बहरहाल आगे लिखते हैं कि और ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, यानी जब तक एक नहीं होगा उस वक्त तक दूसरा नहीं हो सकता। लाजिम और मलजूम का ये मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्री रेक्विसिट, ठीक है? जब तक आप प्री रेक्विसिट, जिसको शर्त भी कहते हैं ना उर्दू में, शर्त जब तक आप पूरी नहीं करेंगे اس وقت تک آپ کو جزا نہیں ملے گی. آیت مذکورہ میں انہی دو قدموں کو دو جملوں میں عطف کر کے بیان فرمایا گیا ہے, وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہاں ذکر اللہ سے مراد اس پر ایسی مداومت ہے جس میں کبھی قصور و فطور نہ ہو, ٹھیک ہے, یعنی ایسی مداومت کہ اس میں کبھی کمی نہ آئے اور کبھی اس کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہو. فطور کا مطلب ہوتا ہے خرابی پیدا ہونا, اور قصور کا مطلب ہوتا ہے کمی ہو جانا, ٹھیک ہے, اور کسی وقت اس سے ذہول نہ ہو, یعنی آپ کبھی بھی اس سے, یعنی وہی سارے ایک ہی مطلب ہے, تینوں الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے, یعنی کبھی آپ غافل نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے نا. تو مداومت علی ذکر اللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. یہی وہ مقام ہے جس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں وصول الی اللہ کہا جاتا ہے. وصول کا لفظ جو ہے نا وہ واصل, وصلا یصل, وصلا فہو واصل, ٹھیک ہے, صرف والے جانتے ہیں نا اس کو, وصلا یصل وصلا فہو واصل, تو پہنچ جانے والے کو واصل کہتے ہیں, اسم فاعل کا صیغہ ہے, اور وصول جو ہے وصل اور وصول دونوں اس کے مصدر ہیں. تو وصول کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانا, ٹھیک ہے, ٹو ریچ. اس طرح پہلے جملے میں آخری قدم کا ذکر فرمایا اور دوسرے جملے میں پہلے قدم کا ذکر فرمایا, یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم لازم و ملزوم ہے کہ اس کو رسما رب کا وتبدل الیہ تبدیلا. یہ ترتیب شاید اس لیے بدل گئی کہ اگرچہ عمل میں تبتل یعنی قطع تعلقات بالمعنی المذکور مقدم ہے اور وصول الی اللہ اس کے بعد اس پر مرتب ہوتا ہے, مگر چونکہ مقصد سالک کا یہ دوسرا قدم ہی ہے اور یہی در حقیقت مقصود المقاصد ہے, اس کی اہمیت و افضلیت بتلانے کے لیے تربیت طبعی و قولی ہوگا, طبعی و قولی کو بدل کر ذکر اللہ کو مقدم بیان فرمایا گیا. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے انہی دو قدموں کو خوب بیان فرمایا ہے, تعلق حجابست و بے حاصلی چون پیوند ہا بگسری و اصلی واصلی, واصلی نہیں واصلی, تو فارسی تو سعدی کو آتی نہیں ہے تو اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکوں گا, لیکن مفہوم اس پیراگراف کا یہ بنا کہ تبتل الیہ تبتیلا جو ہے نا یہ دراصل ہم نے حاصل کرنا ہے, لیکن تبتل کو کرنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو نفس کو کچلنا پڑتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو نفس کو کچلیں گے تو تبتل حاصل ہو جائے گا, لیکن نفس کیسے کچل سکتا ہے کوئی بندہ, تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے رب کا ذکر کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی رب کا ذکر کریں گے تو اس سے جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی نفس جو ہے وہ کمزور ہوگا, وہ کچلا جائے گا, اور جب نفس کمزور ہو جائے گا تو تبتل جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا, کیونکہ نفس ہی مخلوق کے ساتھ تعلق کے اوپر ابھار رہا ہوتا ہے, تو جب نفس جو ابھارنے والا جب ختم ہو جائے گا یا مر جائے گا تو پھر مخلوق کے تعلق کی جو ہے وہ جڑی کر جائے گی, اور جب مخلوق کے تعلق کی جڑ کر جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ کو آٹومیٹیکلی وصول اللہ مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو وصول اللہ کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے, اس آیت کے اندر وصول اللہ کا ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو, اس کے نام کا ذکر کرو, اور جو ہے وہ تبتل اختیار کرو اور وصول اللہ پا جاؤ. یہ وصول اللہ پا جاؤ کا ذکر تو قرآن کی آیت کے اندر تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, تو وصول اللہ جو ہے نا وہ تو اس کا ثمرہ ہے, اس کا رزلٹ ہے جو کہ انسان کو مل جاتا ہے جب وہ یہ دو کام کرتا ہے. پہلا کام یہ کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس ذکر کے نتیجے میں اس کو تبتل الی اللہ جو ہے وہ مل جاتا ہے, اور تبتل الی اللہ جب مل جاتا ہے نا تو پھر اس کا ثمرہ کیا ہوتا ہے, یعنی اس کا پھل کیا ہوتا ہے, وصول الی اللہ. ذکر اسم ذات یعنی اللہ اللہ کا تکرار بھی مامور بھی ذکر و عبادت ہے, یعنی اللہ کے نام کا ذکر کرنا اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, ٹھیک ہے, اور جس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ حکم کریں تو وہ کام کرنا عبادت کہلاتا ہے, کیونکہ عبادت اصل میں کیا ہے, عبادت اصل میں اطاعت ہے نا, ٹھیک ہے, तो अगर आप अतात कर रहे हैं तो वही इबादत है, और इबादत करना भी अतात ही है असल में, ठीक है। तो चूंकि अल्लाह ताला ने हुक्म किया है कि मेरे रब यानी मेरे नाम का जिक्र करो, तो इस वजह से जिक्र यानी नाम का जिक्र करना भी इबादत है, क्योंकि ये इस हुक्म की अतात है। इस आयत में जिक्रुल्लाह के हुक्म को लफ्ज इस्म के साथ मुकय्यद करके, यानी उज़्कुरुल्लाह ये भी तो है ना कुरान के अंदर, उज़्कुरुल्लाह के अल्लाह का जिक्र करो, वहां पर इस्म का लफ्ज है ही नहीं, राइट। उसमें सिर्फ क्या है कि अल्लाह को याद करो, लेकिन यहां पर ना अल्लाह ताला ने इस्म के लफ्ज को भी बीच में रखा है, तो गोया के इस जिक्र को अल्लाह ताला ने यहां पर इस आयत के अंदर नाम के साथ मुकय्यद किया है, जोड़ा है, ठीक है। तो ये मतलब है इस जुमले का कि जिक्रुल्लाह के हुक्म को लफ्ज इस्म के साथ मुकय्यद करके वज़्कुर इस्मा रब्बिक फरमाया है, वज़्कुर रब्बक नहीं फरमाया। इसमें इशारा इस तरफ निकलता है कि इसमें रब यानी अल्लाह अल्लाह का तकरार भी मतलूब व मामूर भी ही है, ठीक है। यानी इस लफ्ज अल्लाह को पढ़ना, जुबान से अदा करना, ये भी इबादत है। बाज़ उलमा ने जो सिर्फ इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह की तकरार को, यानी तकरार का मतलब होता है रिपीटेशन, जुबान से रिपीटेशन, तकरार का ये मतलब होता है। तो बाज़ उलमा ने जो सिर्फ इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह की तकरार को बिदत कह दिया है, इससे मालूम हुआ कि इसको बिदत कहना सही नहीं है, ठीक है। यानी बिदत नहीं है ये, अल्लाह के नाम की तकरार करना ये बिदत नहीं है। ये किसने कहा, ये उमूमी तौर पर ना ये जो अहले हदीस और सलफी उलमा होते हैं ना, तो ये कहते हैं कि अल्लाह 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 इस तरीके से जिक्र करना बिदत है, ठीक है। यहां पर उसकी नफी कर रहे हैं कि नहीं ये बिदत नहीं है, क्योंकि ये कुरान से साबित है कि अल्लाह ताला बाकायदा हुक्म कर रहे हैं कि मेरे नाम का जिक्र करो, तो आप कैसे इसको बिदत कह सकते हैं। तो बिदत ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप लोग जो है वो अल्लाह 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 का जिक्र करना शुरू कर दें, नहीं, ठीक है, ये भी मतलब इसका नहीं है। तो इसका मतलब जो है ना वो यानी क्यों ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो जिक्र करना होता है ना ये अपने मशायख से सीख करके करना होता है, ठीक है। तो आपके मशायख आपको जो जिक्र करने के लिए कह रहे हैं ना, जिस तरह से करने के लिए कह रहे हैं ना, तो उस तरीके से करना चाहिए। बेशक ये बिदत नहीं है, लेकिन हर चीज़ जो बिदत नहीं हो तो वो भी तो यानी एकदम से करना तो नहीं शुरू कर देना होता है ना, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक इफेक्ट होता है, ठीक है। अल्लाह का जो नाम है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इसमें जलाली, ठीक है, इसमें जलाला है। ये जलाल का मतलब होता है जिसके अंदर एक बहुत यानी बहुत सख्ती होती है, बहुत यानी जलाल का लफ्ज ही भाई दो अल्फाज होते हैं ना, एक होता है जमाल एक होता है जलाल। जमाल का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत खूबसूरती हो, बहुत नरम मुलायम खूबसूरत चीज़, उसको जमाल कहते हैं। और जलाल वो चीज़ होती है जिसके अंदर के एक मैग्निफिसेंस होती है, एक बड़ाई होती है। तो जो लफ्ज़ अल्लाह है ना, ये इसमें जमाल नहीं है, ये इसमें जलाल है, इसमें जलाला कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस वजह से ना मशायख हरेक को ये जिक्र करने का नहीं कहते हैं, ठीक है, कि आप अल्लाह अल्लाह की तस्बीह करना शुरू कर दें 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम, क्यों नहीं कहते। इसलिए क्योंकि इसका हर बंदा मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ठीक है, इसका बंदे के ऊपर ऐसा असर होता है कि जिसको कहते हैं ना हाल चढ़ जाना, ठीक है, हाल से बेहाल हो जाना, राइट, इस तरह की चीजें इंसान के ऊपर तारी हो जाती हैं जो कि मकसूद नहीं है, उससे अपना बहुत मसले क्रिएट हो सकते हैं इंसान की जिंदगी में, ठीक है। तो इस वजह से ना शुरू में कम अज कम ये बिल्कुल भी वाला जिक्र करने के लिए नहीं कहते, बल्कि इसका एक बहुत ही यानी अल्लाह के नाम का ही जिक्र जो है वो एक दूसरे अंदाज में करने के लिए कहते हैं, जिसको कि हमारे यहाँ मुराकबा कहा जाता है ना। ये मुराकबा जो है वो भी अल्लाह के नाम का ही जिक्र है, लेकिन वो एक्टिवली नहीं है बल्कि पैसिवली है। एक्टिवली का मतलब क्या होगा कि आप खुद उस एक्शन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं, एक्टिवली जिक्र कर रहे हैं अल्लाह के नाम का, जुबान से ना इस लफ्ज को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इसको एक्टिव टेंस कहते हैं ना। फाइल जहां पर मौजूद हो और वो कोई काम कर रहा हो तो उसको एक्टिव टेंस कहते हैं। मुराकबा जो मशायख बताते हैं ना, खुसूसन जो नक्शबंद सिलसिले के जो मशायख हैं, वो जो मुराकबा बताते हैं, तो ये मुराकबा क्या होता है, कि आप जुबान से कुछ भी नहीं कह रहे, हत्ता कि आप जहन से भी जो है वो अल्लाह 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 प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि आप बैठ करके सिर्फ तसव्वुर कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का जो नाम की तजल्लियात है ना, अल्लाह ताला की जो तजल्लियात है, ठीक है, वो मेरे दिल में उतर रही हैं, ठीक है, उतर रही हैं, मैं नहीं उनको उतार रहा बल्कि वो खुद उतर रही हैं, यानी अल्लाह ताला उतार रहे हैं, सही है। तो इसको कहते हैं पैसिव, इसको एक्टिव नहीं कहते। तो ये जो पैसिव तरीका है ना इसमें ज़ात के जिक्र करने का, ये बहुत हल्का होता है और बहुत आसान होता है, ये तबीयत के ऊपर भारी नहीं होता। ओके, तो इस वजह से इसमें ज़ात का जिक्र करना बिदत नहीं है, लेकिन ये हर एक के लिए मुनासिब भी नहीं होता है। इस वजह से मशायत इसका ये मामूलात में इसको शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, किसी को सवाल है? क्योंकि ये मामूलात से मुतालिक बात है तो उम्मीद है कि आप लोग में से कुछ जो है वो मामूलात करने की कोशिश कर रही होंगी, तो उनको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आगे अगली आयत है, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। मतलब इसका कि यानी रब की फिर तारीफ बयान कर रहे हैं कि जो रब है ना ये मशरिक और मगरिब का लव का रब है, ठीक है, यानी मशरिक में जितनी चीजें हैं उनको भी ये पालता है, मगरिब में जो कुछ भी है अल्लाह ताला की मखलूक उसको भी रब पाल रहा होता है। ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह, इलाह कहते हैं जिसकी इबादत की जाए उसको इलाह कहते हैं, इलाह के लिए माबूद का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। तो ला इलाहा, नहीं है कोई इबादत के लायक, इल्ला हु, सिवाय उसके, किसके, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी, यानी उस रब के जो के मशरिक का भी रब है मगरिब का भी रब है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। फत्तखिज हु, पस पकड़ो उसको वकीलन, वकील के तौर पर उसको पकड़ो, अपने लिए वकील के तौर पर पकड़ो, ठीक है। वकील का मतलब क्या होता है, वो ये लिख रहे हैं कि वकील लुगत में उस शख्स को कहा जाता है जिसको कोई काम सुपुर्द किया जाए, ठीक है, उसको वकील कहते हैं। यानी मतलब क्या हुआ कि अपने रब को जो के मशरिक और मगरिब का रब है और जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसको अपना वकील बनाओ, उसको अपना वकील बनाओ, अपने मुआमलात को उसके सुपुर्द करो, अपने मुआमलात को उसके सुपुर्द करो, ये हुक्म है अल्लाह ताला का। फत्तखिज़ु वकीलन का मफहूम ये हुआ कि अपने सब कारोबार मुआमलात और हालात को अल्लाह के सुपुर्द करो, इसी का नाम इस्तिलाह में तवक्कुल है। इस सूरत में जो अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हैं ये इनमें पांचवा हुक्म है, ठीक है, बकायदा तरतीब से कुमिल लैल जो था ना वो पहला हुक्म था, सही है, उसी तरीके से दो तीन चार हुक्म और आए, और यानी तीसरा और चौथा हुक्म क्या हुआ, वो हुआ यानी वस्कुरिस्मा, ये तीसरा हुक्म हुआ, और तबत्तुल ये चौथा हुक्म हुआ, और पांचवा हुक्म हुआ फत्तखिज़हु वकीलन, ये पांचवा हुक्म हुआ इस आयत के अंदर। दूसरा हुक्म क्या था, रत्तिलिल कुरान, ये दूसरा हुक्म था, ठीक है ना। तो ये तरतीब याद रहेगी, सब लिखने अपने पास अगर या उसके ऊपर पॉइंट नोट लिखने, 1 2 3 4 5, सही है। तो तफसीर इतनी तफसील के साथ पढ़ रहे हैं तो इतना तो फायदा होना चाहिए ना कि सूरह मुजम्मिल के अंदर पहला हुक्म कौन सा है, दूसरा हुक्म कौन सा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये पांचवा हुक्म है, ठीक है, अपने मामलात को और हालात को अल्लाह ताला के सुपुर्द करना। इमाम याकूब करखी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि शुरू सूरत से इस आयत तक मुकामात सुलूक की तरफ इशारा है, ठीक है, यानी सुलूक जो आपको पहले समझाया था ना कि रास्ते को तय करना इसको सुलूक कहते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ना कुछ मुकामात आते हैं, जैसे कि अगर आप ड्राइव करके मक्का मुकरमा जाएं तो रास्ते में आते हैं ना कि रेस्ट एरियाज आते हैं, पहला रेस्ट एरिया, दूसरा रेस्ट एरिया, चौथा रेस्ट एरिया, ठीक है, तो ये मुकामात है रास्ते के ऊपर, मंजिल नहीं या ट्रांजिट पॉइंट नहीं बल्कि मुकामात, ठीक है। तो उसी तरह से सुलूक के रास्ते के अंदर जो है ना वो कुछ मुकामात आते हैं, अब पहले इस मुकाम पे पहुंचते हैं, फिर दूसरा मुकाम इसको पहुंचते हैं, तीसरा उसको पहुंचते हैं, तो उनको मुकामात सुलूक कहा जाता है। ये मुकामात सुलूक क्या है, नंबर डाल करके उन्होंने लिखा है कि यानी रात में अल्लाह ताला की इबादत के लिए खलवत, नंबर दो कुरान करीम में इश्तगाल, नंबर तीन जिक्रुल्लाह पर दवाम, और नंबर चार मा सिवा अल्लाह से एराज व तर्क ताल्लुक, और नंबर पांच अल्लाह ताला पर तवक्कुल। ठीक है, तो गोया के ये पांच मुकामात हैं जो कि जो इस रास्ते को तय करते हैं ना, तो वो इन पांचों मुकामात से गुजर करके ही इस रास्ते को तय करता है। ठीक है, रात में अल्लाह ताला की इबादत के लिए खलवत, तो इसको जो है वो आप यानी तहज्जुद से भी ताबीर कर सकते हैं, और इसको आप ये भी कर सकते हैं कि कोई शख्स तहज्जुद अगर नहीं भी पढ़ पाता तो तहज्जुद की तमन्ना दिल में रखता है, और तहज्जुद के वक्त का खलवत, तहज्जुद के वक्त की खलवत अगर उसको मुयस्सर नहीं है किसी वजह से, छोटे बच्चे हैं घर के अंदर, ठीक है, वो जो है वो रात को जागते हैं या रात को सोते हैं, रात को रोते हैं, ठीक है, तो उसको रात में खलवत में मुयस्सर नहीं हो सकती, तो क्या मतलब अब वो पहला मुकाम तय ही नहीं कर सकती ये औरत? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये भी पहला मुकाम तय कर सकती है। ये कैसे तय करेगी? ये ऐसे तय करेगी कि तहज्जुद की तमन्ना रखे दिल के अंदर, पढ़े बेशक नहीं लेकिन दिल में तमन्ना रखे। और दूसरा तरीका क्या होगा कि जब दिल में उसको कोई खलवत का अगर मौका मिल जाता है ना, तो उस दिन में उस खलवत के मौके को इस्तेमाल करें, ठीक है, तो ये मुकाम उसको हासिल हो जाएगा, ऐसी औरत को भी हासिल हो जाएगा। तो ये पांच मुकामात हो गए। इसके आगे पढ़ने से पहले इनका कमेंट या जो भी है सवाल वो पढ़ लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम मुराकबा सही तरीके से कर रहे हैं और मुराकबे के हम पर असरात आ रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बता देंगे आपको अगर, है ना, सही कह रहा हूँ? बाकी सालिकात जवाब सही होगा ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बता देंगे। तो आगे चलते हैं, तवक्कुल के आखिरी हुक्म से पहले अल्लाह ताला शानहु की सिफत रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी बयान करके इस तरफ इशारा कर दिया कि जो जात पाक मशरिक व मगरिब यानी सारे जहान की पालने वाली और उनकी तमाम जरूरियात इब्तिदा से इंतहा तक पूरा करने की मुतकफ़िल है। ठीक है, तवक्कुल और भरोसा करने के काबिल सिर्फ वही जात हो सकती है और इस पर भरोसा करने वाला कभी महरूम नहीं रह सकता, जैसा कि कुरान करीम का इरशाद है, वमन यतवक्कल अलल्लाही फहुवा हस्बुह, कि जो अब अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला उसको काफी हो जाता है। फहुवा हस्बुह, हसबा या हसबु का मतलब होता है काफी हो जाना, भी उसके मतलब मुतालिब में से एक मतलब है, यानी जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा करता है अल्लाह उसके सब मुहिम्मात और मुश्किलात के लिए काफी हो जाता है। ठीक है, तवक्कुल का ये मतलब होता है, तो कल से तवक्कुल शुरू कर रहे हैं भी सारे लोग, इरादा कर रहे हैं तवक्कुल करने का, इरादा करने पे नेकी मिलती है, तवक्कुल का इरादा तो करें। तो तवक्कुल का मतलब जो है ना वो क्या है, तो पहले इनके मसले को कोई हल करेगा, जी इनका एक सवाल है जिसका के जवाब साजिश ने दिया, लेकिन फिर आपसे पूछा भी था कि भाई सही जवाब है कि गलत जवाब है, किसी ने बताया ही नहीं क्या जवाब है भी इनके सवाल का। हाँ, किसी का शेख अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो तो फिर जी अब इतना तो कम से कम तो सवाल नहीं किया करें ना, मैं माजरत के साथ आपको सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन भाई राबता है शेख जब तक नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेंगे ये सारी चीज़ें। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो नहीं उतरेंगे ना, और वो तो वैसे भी वो तो नबी अलैहिस्सलाम के भी शेख नहीं थे, तो हमारे कैसे शेख हो सकते हैं वो, ठीक है, तो जो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए होते हैं उन वसीलों का इस्तेमाल करना होता है। कैसे पता चलेगा? अभी बताएंगे, अहवाल बयान करेंगे तब पता चलेगा ना, तब बताएंगे कि क्या क्या चल रहा है आपके साथ। एनीवेज जब ये आजिज कहता है ना, ये व्हाट्सएप जो है ना हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। ठीक है, एक मुसीबत तो आम लोगों के लिए है कि वो व्हाट्सएप के जरिए से हराम देखते हैं, हराम सुनते हैं, ठीक है ना। लेकिन सूफियों के लिए भी व्हाट्सएप एक मुसीबत बन जाएगा। वो क्या कि भाई जब व्हाट्सएप दिया था तो फिर तुम क्यों रब्ता नहीं करते थे व्हाट्सएप के ऊपर? ये भी तो व्हाट्सएप की मुसीबत बनने की एक शक्ल है ना। बेशक आप गंदी चीज़ें सुने नहीं, गंदी चीज़ें देखे नहीं, ठीक है, लेकिन हुज्जत भी तो बन सकता है ना ये व्हाट्सएप कि भाई क्यों, क्या मसला था इसके अंदर मेरा। तो तवक्कुल का मतलब जो है ना, वो हमारे ऊपर जो अप्लाई होता है वो थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी जो हमने पढ़ ली है, इस थ्योरी से तो तवक्कुल अगर करना शुरू कर देंगे तो फिर तमाशे होंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे, ठीक है। तो इस वजह से पहली बात तो ये बताई जानी ज़रूरी है ना कि नबी अलैहि सलाम से भी जब किसी ने पूछा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, इक्ल व तवक्कुल, इक्ल व तवक्कल, ठीक है, कि अपने ऊँट को पहले बांधो, रस्सी से बांधो, फिर उसके बाद अल्लाह ताला पे तवक्कुल करो। ये नहीं करो कि ऊँट को जो है वो छोड़ दिया और अल्लाह ताला पे तवक्कुल किया, भाई अल्लाह ताला इस ऊँट की हिफाजत करेगा, हालांकि अल्लाह ताला ने रस्सी दी हुई थी। जब रस्सी दी हुई थी तो फिर तुमने ऊँट को रस्सी से बांधा क्यों नहीं? हाँ, अगर अल्लाह ने रस्सी नहीं दी होती, अगर किसी के पास रस्सी है ही नहीं ऊँट को बांधने के लिए, अब वो कैसे बांधे भाई, उसके पास तो रस्सी नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो उसको करना चाहिए अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल कि ए अल्लाह, मेरे पास रस्सी होती तो मैं जरूर बांधता उसको, फिर तेरी जात पे तवक्कुल करता, लेकिन मेरे पास रस्सी नहीं है तो मैं कैसे बांधू? ए अल्लाह, आप इसकी हिफाजत फरमा दीजिएगा, ठीक है। तो ये उस शख्स के लिए जायज होगा जिसके पास रस्सी नहीं होगी, लेकिन जिसके पास रस्सी है उसको जरूरी है कि वो ऊंट को रस्सी बांधे, फिर अल्लाह ताला से तवक्कुल करे। क्या मतलब? जब बांध लिया आपने, अब अल्लाह पे तवक्कुल करने की जरूरत क्या रह गई जी? आप बताएं, जब रस्सी बांध दी फिर अल्लाह पे तवक्कुल की जरूरत क्यों पेश आई? अब क्या जरूरत है तवक्कुल करने की, आपने तो रस्सी बांध ली जी, इसका क्या जवाब होगा? तो क्या जवाब होगा भाई, जब रस्सी बांध ली तो फिर तवक्कुल की तो जरूरत ही खत्म हो गई। अब तो रस्सी हिफाजत करेगी ना आपकी ऊंट की। नाऊज बिल्ला, अल्लाह ताला आप तो पिक्चर से निकल गए। रस्सी बांधने के बाद अल्लाह ताला पिक्चर से निकल जाते हैं, अल्लाह ताला की अब जरूरत नहीं रहती या रस्सी बांधने के बाद तवक्कुल अब खत्म, क्योंकि उस वक्त भी अल्लाह ताला ही हिफाजत करेंगे। भाई ये बोले ना कि रस्सी तो ऊंट तोड़ा भी सकता है, राइट? रस्सी तो आपने बांध दी लेकिन ऊंट रस्सी तोड़ा भी तो सकता है ना, या कोई चोर आकर के उस रस्सी को खोल करके भी तो आपका ऊंट लेके जा सकता है। हाँ, कोई खोल करके भी ले जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे बात करें ना। तो अब उस चोर से कौन बचाएगा? उस चोर से अल्लाह ताला बचाएगा, लेकिन रस्सी आपने बांध दी है, ठीक है, ये है कंप्लीट पिक्चर। रस्सी बांधने के बाद अल्लाह ताला पिक्चर से निकल नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि अभी भी उस ऊंट को मुख्तलिफ तरीकों से या तो कोई चोरी कर सकता है या कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। लेकिन आपके पास जो असबाब मौजूद थे वो असबाब आपने इख्तियार कर लिए उसकी हिफाजत के। बिल्कुल यही मामला जो है वो हर जगह अप्लाई होता है। हम असबाब जो अल्लाह ताला ने हमें दिए होते हैं उन असबाब को हम इख्तियार करते हैं, और फिर नताइज जो हैं यानी उसके बाद का जो मामला है वो हम अल्लाह ताला पर छोड़ते हैं, ठीक है। तो तवक्कुल ये है, ओके। तो असबाब इख्तियार करना बिल्कुल इसी तरीके से जो रूहानी बीमारियों का इलाज होता है, इस इलाज के लिए भी अगर अल्लाह ताला ने शेख मुहैया किया है, आपके मोहल्ले में रहता है, आपके शहर में रहता है, या आपके साथ जो है वो यानी व्हाट्सएप के ऊपर रابطے पे अवेलेबल है कोई शेख जिसके साथ आप अपने अहवाल डिस्कस कर सकते हैं, तो शेख जो होता है ये सबब होता है, ये रस्सी की मानिंद होता है, राइट। शेख ने
आपको सिर्फ दवाई देनी होती है, मशवरा देना होता है, शेख ने आपको शिफा नहीं देनी होती है, राइट? शेख ने शिफा नहीं देनी होती है, शिफा अल्लाह ताला ने देनी है, ठीक है ना? तो शेख सबब के तौर पर है। अब किसी को अल्लाह ताला ने सबब दिया हो, लेकिन वो कहे नहीं मैं तो नहीं, मुझे तो कोई सबब की जरूरत नहीं, मैं तो सबब इख्तियार ही नहीं करूंगा, मैं तो अल्लाह की जात से दुआ करूंगा और अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल करूंगा कि अल्लाह आप मुझे जो है वो रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमा दें। ऐसे शख्स को क्या मिलेगा? इसको शिफा नहीं मिलेगी, हमारी लैंग्वेज में इसको ठेंगा मिलेगा, इसको शिफा नहीं मिलेगी, ठीक है? ठेंगा जो है ना वो मशरक के अंदर दूसरे मानी में इस्तेमाल किया जाता है, मगरब में दूसरे मानी में इस्तेमाल किया जाता है। मगरब के अंदर ठेंगा जो है वो थम्स अप के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, किसी को जब शाबाश देनी होती है ना तो उसको ठेंगा दिखाते हैं, ठीक है? लेकिन मशरक के अंदर ठेंगा दिखाते हैं उस शख्स को जिसको कुछ भी नहीं देना होता और उसको ऐसे ही फारिग कर देना होता है, ठीक है? तो हम चूंकि मशरकी हैं तो हमने मशरक की टर्म इस्तेमाल करनी है। तो ऐसे शख्स को जो है ना जो जिसको कि अल्लाह ताला ने सब असबाब दिए हों, यानी रस्सी दी हो, और वो कहे नहीं मैं तो रस्सी बांधूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं तो अल्लाह की जात पे तवक्कुल करूंगा, ठीक है? तो ऐसे शख्स को जो है ना फिर ठेंगा मिलता है, ऐसे शख्स को कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है? क्योंकि ये खिलाफ सुन्नत अमल कर रहा है। असबाब को इख्तियार करना ये सुन्नत तरीका है, ठीक है? और ये शख्स सुन्नत से अपने आप को कह रहा है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है सुन्नत इख्तियार करने की, तो भाई अल्लाह ताला तो फिर उसको फिर कुछ भी नहीं देंगे ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सुन्नत तरीका प्रेस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात और आखिरी बात करके जो ये क्लास खत्म करेंगे वो ये है कि तवक्कुल की मफहूम तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, लेकिन ये तवक्कुल जो है ना ये हम करते नहीं है बिल्कुल भी ना। यानी एक तो हम असबाब इख्तियार करते नहीं हैं, एक गलती होती है हमारी, ठीक है? किसी मसले को सॉल्व करने के लिए हम असबाब इख्तियार नहीं करते, हम सुस्ती और काहिली की वजह से असबाब इख्तियार नहीं करते, ठीक है ना? और यानी बहाना क्या बनाते हैं कि भाई क्या जरूरत है मेहनत करने की, क्या जरूरत है कुछ करने की, बस अल्लाह ताला पे तवक्कुल है ना। तो ये जो तवक्कुल होता है ना ये झूठ होता है, असल में ये सुस्ती और काहिली होती है, सही है? तो ये पहली गलती होती है हमारी। दूसरी गलती हमारी क्या होती है, यानी गलती की दूसरी शक्ल वो क्या होती है? वो ये होती है कि यानी समझ लें कि इंसानों के दो किस्में होती हैं। एक वो किस्म होती है जो कि काहली, सुस्ती, और आजकल उसको डिप्रेशन का भी नाम दे दिया गया है, ठीक है ना? ये भी एक टर्म है जो कि बाद में बनाई गई है, कैफियत तो पहले से मौजूद थी लेकिन उस कैफियत को एक टर्म दे दिया गया डिप्रेशन। और डिप्रेशन का की फीलिंग की एक्सप्लेनेशन क्या होती है? कुछ करने को जी नहीं चाहता, कुछ करने को जी नहीं चाहता, इसको जो है वो डॉक्टरों ने डिप्रेशन का नाम दे दिया, लेकिन हमारे मुआशरे में ना इसको सुस्ती और काहली कहा जाता है असल में, ठीक है? तो बहरहाल, तो गलती करने वाले लोगों की जो पहली किस्म होती है ना वो ये होती है कि सुस्ती काहली की वजह से असबाब को इख्तियार ही नहीं करना। दूसरी जो किस्म होती है गलती करने वालों की, तवक्कुल के मामले में गलती करने वालों की दूसरी किस्म क्या होती है वो अगर आप में से कोई बता दें। इंटरेक्टिव क्लास बनाने का मुझे करना ही पड़ता है वरना आप लोग तो खामोशी से गुजर जाएंगे पूरी क्लास। गलती की दूसरी शक्ल क्या होती है? एक शक्ल आपको मैंने बता दी कि असबाब नहीं इख्तियार करना, और दूसरी शक्ल क्या होती है? जब इस तरह के सवाल किए जाए ना कि एक शक्ल बता दी या दूसरी शक्ल आप बताएं किसी भी मामले में, तो एक उसूल याद रखा करें, अगर वो उसूल आपके जहन में रहेगा ना तो फिर आपके लिए जवाब देना बड़ा आसान हो जाएगा कि गलती की दो ही शक्लें होती हैं, एक अफराद दूसरी तफरीद। तो अगर आपको मैंने अफराद वाली शक्ल बता दी या तफरीद वाली शक्ल बता दी तो दूसरी शक्ल जो होगी वो अफराद वाली शक्ल होगी, ठीक है? तो सुस्ती करना तो मैं आपको बता चुका हूँ ना, अब आप क्या बता रही हैं इसको, तो दूसरा क्या है? गलत असबाब इख्तियार करना, ठीक है? माशाल्लाह आज तो आपने कुछ सोच करके आई है कि सही जवाब देने का, माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। गलत असबाब इख्तियार करना, असबाब पर मुकम्मल भरोसा करना, ये भी कह सकते हैं कि सारा भरोसा असबाब पर ही हो जाना, ये भी एक्चुअली ये तीसरी शक्ल भी हो सकती है, बल्कि ये तीसरी शक्ल नहीं कहेंगे, ये भी दूसरी ही शक्ल है असल में, गलत असबाब इख्तियार करना। और गलत असबाब इख्तियार करने का نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہی اسباب پر بھروسہ بھی انسان کا بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو گویا کہ آپ دونوں نے جو جواب دیا نا, یہ دونوں اسی ایک جواب کی دو شکلیں ہیں. ٹھیک ہے, یا غلط اسباب اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان اسباب کے اوپر انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, گویا کہ غلط اسباب اختیار کرنا یہ برا عمل ہے, اور اس برے عمل کی سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کا عقیدہ بھی برا ہو جاتا ہے, یعنی وہ اسباب پر بھروسہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط اسباب اختیار کرنے کی سزا ہوتی ہے. اوکے, تو غلط اسباب اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ حرام طریقے سے کوئی کام کرنے کی کوشش کرنا, حرام اسباب اختیار کر کے. مثال کے طور پر خاندانوں کے اندر, کیونکہ عورتوں کی کلاس ہے, تو خاندانوں میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ آج کل تو شادیاں ایک ہی ہوتی ہیں, دو شادیوں والا مسئلہ تو ہے نہیں, تین شادیوں والا تو بہت ہی کم, یہ تو ہوتا نہیں ہے. تو آج کل گھروں کے اندر لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ ساس بہو کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ساس صاحبہ اگر اپنے بیٹے کو کھینچنے کے لیے کچھ کوشش کر رہی ہیں نا اپنی طرف, اور وہ غلط یعنی وہ زیادتی کر رہی ہیں بہو کے اوپر, تو بہو صاحبہ جو ہے نا وہ حلال اسباب اختیار کر کے اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی بجائے حرام اسباب بھی اختیار کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, حلال اسباب کیا ہوتا ہے کہ بھائی بیوی جس طرح سے اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے سنت سے جو چیز ثابت ہے اس طرح سے کرنا, لیکن نہیں, اب وہ ساس کو اپنے شوہر کی نظر میں ساس کو برا بنانے کے لیے ساس کے بارے میں جھوٹی باتیں, جھوٹے الزامات لگانا شروع کرتے ہیں کہ آپ کی امی نے ایسا بھی کہا تھا آپ کے بارے میں, یا آپ کی امی نے مجھے اس طریقے سے جو ہے وہ ذلیل کیا تھا, اور آپ کی امی نے جو ہے وہ میرے خاندان والوں کے بارے میں ایسی باتیں کری تھی. ٹھیک ہے نا, جھوٹ بول بول کر کے, تاکہ اس کے شوہر کا دل جو ہے اس کی ماں سے خراب ہو جائے, رائٹ, اور یہ مکمل طور پہ میری مٹھی میں آ جائے. تو یہ جو کر رہی ہے نا, یہ کر رہی ہے کہ بہت زیادہ اسباب اختیار کر رہی ہے اور حرام اسباب اختیار کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی سزا اس کو کیا ملے گی؟ اس کی سزا یہ ملے گی کہ اس کی نگاہ اللہ کی طرف سے بالکل ہٹ جائے گی. یہ جو حرام اسباب اختیار کر رہی ہے نا, اس کی سزا یہ ہوگی کہ پہلے تو پھر تھوڑا بہت اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتی تھی, لیکن اب اللہ کی طرف سے اس کی توجہ بالکل ہٹ جائے گی, اور اللہ تعالیٰ اس کو انہی برائیوں کے حوالے کر دیں گے, اسی لڑائی جھگڑے کے ماحول کے حوالے کر دیں گے. اب یہ ہر وقت لڑتی رہے گی, ہر وقت جو ہے وہ جھوٹ طریقے سے اور کسی غیبت کے ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے کام نکالنے کی کوشش کرتی رہے گی, اور اس کی زندگی جو ہے نا وہ جہنم بن جائے گی. ٹھیک ہے, یہ کیوں بنی؟ کیونکہ اس نے حلال اسباب اختیار کرنے کے بجائے حرام اسباب اختیار کرنے شروع کر دیے کوئی کام نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ توکل کی جو غلط شکلیں ہوتی ہیں نا, یہ ان میں سے دوسری شکل ہوئی. پہلی شکل یہ تھی کہ ہاتھ بالکل ہی ہاتھ چھوڑ دے اور ڈپریشن کے حالت میں جو ہے وہ بیٹھ جائے, اور بس جی بس اس گھر کے اندر تو کوئی مجھے عزت ہی نہیں دیتا, اور اس گھر کے اندر تو بس سارے معاملات ہی خراب ہیں, اور یہ ہیں وہ ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ بالکل ہی عمل کرنا چھوڑ دے, اور بالکل جو ہے نا وہ یعنی اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے اور ایک یعنی بیٹھ جائے بالکل اس طریقے سے, تو وہ کہلائے گا کہ اسباب بالکل ہی اختیار نہیں کیے جو کہ اس کو کرنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, یہ توکل نہیں ہے. توکل کی ایک تو اصل شکل یہ ہے کہ حلال اسباب اختیار کرنا لیکن نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا, اور اس کی جو حرام شکلیں ہیں ان میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ بالکل اسباب اختیار نہ کرنا, اور دوسری حرام شکل اس کی یہ ہے کہ حرام اسباب اختیار کرنا شروع کر دینا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم انشاءاللہ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں, باقی اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. اسی کو اگر کوئی سوال ہے اس موضوع پہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کچھ اور دیر ہو سکتے ہیں. فرینڈز ریز بھی نہیں کیا تو کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.